श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मैंने जो प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस अध्ययन में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ें इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं ऐसे सुंदर अवसर के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। आज इस समय जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन करते हैं, प्रभु जी उन वचनों को समझना और सीखना चाहते हैं, तो हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक आपके वचन को समझकर उसके अनुसार से चलने वाला बन सके। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, आप उनके भी सुधि लें, उनकी सहायता करें ताकि हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भविष्य का प्रकाशन दिया कि भविष्य में क्या होने वाला है, और प्रभु यीशु ने एक स्वर्गदूत के माध्यम से यूहन्ना पर ये भावी घटनाएं प्रकट की जिन्हें उसने लिख दिया कि उसके पढ़ने और सुनने वाले इन बातों को माने और धन्य हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु फिर से आएगा। हम यह ना सोचें कि ये भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। यह सब भविष्यवाणियां कलीसिया के पृथ्वी पर से उठाए जाने के बाद पूरी होंगी। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि पुस्तक के लेखक यूहन्ना और स्वर्ग में प्रभु यीशु की ओर से बधाई। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक अध्याय उसके चार पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की सात कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन सात आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। यह एक महान अभिवादन है। यूहन्ना की ओर से आसिया की सात कलीसियाओं के नाम, आसिया आज के तुर्किस्तान और उसके आसपास का क्षेत्र था। देखिए, यूहन्ना किसी छोटी मोटी जगह की बात नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यूहन्ना इन सातों कलीसियाओं में जनमान्य था। यह तो हम जानते हैं कि यूहन्ना इफिसुस की कलीसिया का पास्टर था और उस क्षेत्र में जितनी भी कलीसियाएं थी, स्पष्ट है कि वे उसकी देखरेख के अधीन में रही होंगी। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, मैं आपका ध्यान सातवीं कलीसिया की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं। इस पद में सात कलीसियाओं और सात आत्माओं का उल्लेख किया गया है। परमेश्वर के वचन में अंक सात का महान महत्व है जो यूहन्ना के युग के लोग समझते थे, परंतु हमारे लिए यह अनजान है। आज अंधविश्वासी और सटोरिये अंकों के महान महत्व को देते हैं, परंतु हम अंकों को धार्मिक महत्व नहीं देते हैं। तथापि परमेश्वर के वचन के सात अंक का सा बड़ा महत्व है। इसका अर्थ है पूर्णता और पूर्णता, कभी कभी सिद्धता का अर्थ भी रखती है, परंतु सदैव नहीं। तो आइए हम देखें सात परिपूर्णता और प्रतिनिधित्व का भी बोध करता है और विशेष करके अंक 7 का संबंध परमेश्वर की वाचा और इसराइल के साथ उसके प्रयोजनों से है। उदाहरण के लिए सप्त का दिन, खतना, आराधना आदि सब 7वें दिन से जुड़े हुए हैं। आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि यरीहो 7 बार घेरा गया था, नामान को यर्दन में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा गया था, यूसुफ के युग में मिस्र में 7 वर्ष अकाल पड़े और 7 वर्ष वृद्धि हुई, नबूकदनेस्सर 7 वर्ष मानसिक रोगी था, नए नियम में 7 धन्यवादियां हैं, धन्य वचन है, प्रभु यीशु की प्रार्थना में 7 निवेदन है, मत्ती रचि सुसमाचार अध्याय 13 में 7 दृष्टांत हैं, यीशु ने 7 रोटियों से जनसमूह को भोजन कराया था, क्रूस पर लटकते समय प्रभु यीशु ने 7 वचन कहे थे। अतः प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 के अंक का होना न तो संयोग समझा जाए न ही उसे अनदेखा किया जाए। यहां 4वें पद में यूहन्ना 7 कलीसियाओं को संदेश लिख रहा है। क्या एशिया माइनर में अन्य कलीसियाएं नहीं थी? कुलुसे, मिलेतुस, हिरापुलिस, त्रोवास और अन्य स्थानों में भी कलीसियाएं उपस्थित थी। हिरापुलिस आज भी है और लौदिकिया से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। लौदिकिया तो आज खंडहर है। हिरापुलिस के खंडहर वैभवशाली हैं और महत्वपूर्ण भी दिखते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर पता चलता है कि वह नगर कभी कैसा महान रहा होगा। इसके विपरीत लौदिकिया के खंडहरों में आज खेती हो रही है, उस स्थान की खुदाई नहीं की गई है। यूहन्ना से कहा गया था कि वह 7 कलीसियाओं को लिखे जिनमें हिरापुलिस की कलीसिया नहीं थी। यद्यपि वह मसीही विश्वास के प्रभाव का महत्वपूर्ण केंद्र था, वहां 4 आरंभिक आराधनालयों के खंडहर खोजे गए हैं। यूहन्ना को कहा गया था कि वह उन 7 कलीसियाओं को लिखे क्योंकि उसके संदेश में कलीसिया का संपूर्ण इतिहास है, और ये कलीसियाएं प्रतिनिधि कलीसियाएं थी, जैसा कि हम आगे देखेंगे। आसिया न तो एशिया महाद्वीप है और न ही संपूर्ण एशिया माइनर। कहा जाता था कि यह कोई अलग स्थान है या द्वीप है। यहां आसिया से अभिप्राय था लुदिकिया, मिसिया, कारिया और फ्रूगिया का कुछ भाग। यह एशिया माइनर का अधिकांश भाग था जो तटीय प्रदेश था। आगे कहता है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यह वाक्यांश वास्तव में पद 4 में है। अनुग्रह यूनानी अभिवादन का शब्द है और शांति इब्रानी अभिवादन का शब्द है। शांति अनुग्रह से प्रवाहित है और अनुग्रह आज हमारी सब आशीषों का स्रोत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर का अनुग्रह और शांति प्रकट करती है। अतः हमें इस पुस्तक के अध्ययन में डरना नहीं है, क्योंकि यह हमारे मन में परमेश्वर की शांति लाती है। आगे कहता है, यह उसकी ओर से है और उन 7 आत्माओं की ओर से। 7 आत्माएं पवित्र आत्मा और 7 दीपदानों का प्रतीक है, जैसा हम आगे देखेंगे। यह त्रिएक परमेश्वर को भी दर्शाता है, जो है और जो था और जो आने वाला है। यह परमेश्वर की अनंत स्थिति है और अपरिवर्तनीय है। अब त्रिएक परमेश्वर के प्रत्येक एकत्व को देखें। यीशु मसीह जो अगले पद में है, 7 आत्माओं पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और जो है और जो था और जो आने वाला है पिता परमेश्वर के बारे में है। आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। मेरे मित्रों, इन दो पदों में हमें प्रभु यीशु के विभिन्न विवरण दिए गए हैं और रोचक बात तो यह है कि उसके सात उपनाम यहां पर दिए गए हैं। पहला, विश्वास योग्य साक्षी। इस पुस्तक के तथ्यों का एकमात्र विश्वास योग्य गवाह प्रभु यीशु ही है। ये तथ्य उसी के बारे में है, वह अपने विषय गवाही देता है। मनुष्य पर विश्वास करना कठिन है, परंतु प्रभु यीशु पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। और दूसरी बात हम देखते हैं, नाम जो है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा, अर्थात फिर कभी नहीं मरेगा। यह एक अद्भुत चित्रण है, वह मर कर फिर से जी उठा। उसकी देह महिमामय देह है, आज तक कोई भी मर कर जी नहीं उठा है, और उसके अनुयायी भी उसके समान मरने के बाद जी उठेंगे और पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे। पहला थिस्लोनिकियों की पत्री 4:14 में हम इसे पाते हैं। इसके बाद पृथ्वी पर प्रकाशन आएगा जब वह पुनः आएगा। और तीसरी बात हम देखते हैं उसके नाम के बारे में, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। यह 1000 वर्षीय राज में उसका स्थान होगा, फिलिपियों की पत्री 2:4-11 में। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में महान है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। चौथी बात यानी कि नाम देखते हैं, वह हमसे प्रेम रखता है। यह वर्तमान है और उसके अपनों के प्रति उसके स्वभाव को व्यक्त करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह उसकी ओर से है जो हमसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु का प्रेम क्रूस तक ही सीमित नहीं था, वह उस समय हमसे प्रेम रखता था और आज भी वह हमसे प्रेम रखता है। इस पल भी प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता है। पांचवी बात और पांचवा नाम, अपने लहू के द्वारा हमें अपने पापों से छुड़ाया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का लहू बहुत महत्वपूर्ण है। यह मात्र एक चिन्ह ही नहीं, पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को शिक्षा दी। लय व्यवस्था की पुस्तक 17:11 में, शरीर का प्राण लहू में रहता है। परमेश्वर कहता है, उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। मेरे विचार में जब प्रभु यीशु ने लहू बहाया था, तब उसके लहू की एक एक बूंद बह गई थी। उसने आपके और मेरे लिए लहू बहाया था, वह आपके और मेरे पापों के लिए मर गया था, और मैं उसकी मृत्यु को किसी प्रकार कम करना नहीं चाहता हूं। पहला पत्रस की पत्री 1:18-19 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। और इसी बहाए हुए लहू के कारण पौलुस युवा प्रचारक तिमोथियुस को लिखने के योग्य था। 1 तिमोथियुस 2:5 में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। उसने अपने लहू के द्वारा पापों के बंधन से हमें छुड़ाया है। यह कैसी महान एवं महिमामय बात है। छठवीं बात और छठवां नाम, हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। विश्वासियों को राजा कभी नहीं कहा गया है, वे याजकों का राज्य है जो प्रभु यीशु के साथ राज करेंगे। जब राजा आएगा तब वह इस पृथ्वी पर संपूर्ण धार्मिकता का अंत करेगा, परंतु इससे पूर्व वह कलीसिया को उठाने आएगा परंतु पृथ्वी पर नहीं उतरेगा। उस समय वह मेरा उद्धारक और कलीसिया का दुल्हा होगा। उसने कलीसिया से प्रेम रखा और उसके लिए अपनी जान भी दे दी। वह मेरे प्राणों का प्रेमी बन करके आएगा। अतः मैं राजा के आगमन से अधिक प्रसन्न नहीं होता हूं, क्योंकि मेरा संबंध उसके साथ घनिष्ठ है। वह मेरा प्रभु है। उसने मुझे राजा और याजक नहीं बनाया, उसने हमें याजकों का राज्य बनाया है और हम उसके साथ राज करेंगे। मेरे प्रियो, यह बड़ी रोचक बात है पिता परमेश्वर के लिए। यह वास्तव में ऐसा है पिता और उसके परमेश्वर के लिए। वह यह क्यों नहीं कहता परमेश्वर और हमारे पिता के लिए? वह प्रभु यीशु का पिता है, वैसा हमारा नहीं है। हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, परंतु नया जन्म पाकर प्रभु यीशु को ग्रहण करके हमारा स्वर्गिक जन्म होता है। प्रभु यीशु मसीह त्रिएकत्व में एक पुत्र का स्थान रखता है। अब हम सातवीं बात देखते हैं, सातवां नाम उसका, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। यह अनंत युग के बारे में है। आमीन। प्रभु यीशु आमीन है। जैसा हमने यशाया की पुस्तक में देखा था, यह उसका उपनाम है। प्रभु यीशु इस पुस्तक का कर्ता और कर्म दोनों है। वह हर एक घटना का करने वाला है और हर एक घटना उसी की ओर उन्मुख रहती है। वह हर एक बात में दूरस्थ अनंत उद्देश्य है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह उसी के द्वारा है, वरन उसी के लिए है। यह संपूर्ण जगत उसी के लिए है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:7 में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। कहता है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। यह प्रभु यीशु के व्यक्तिगत शारीरिक आगमन को दर्शाता है। लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी। इससे स्पष्ट है कि उसके आगमन पर वह शारीरिक रूप में दिखाई देगा। यह तो हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु कलीसिया को लेने के लिए आएगा तब वह हर एक को दिखाई नहीं देगा। विश्वासी प्रभु यीशु से मिलने आकाश में उठा लिए जाएंगे, परंतु प्रभु यीशु उस समय पृथ्वी पर पदार्पण करेगा, तो कलीसिया के उठाए जाने में कोई समझ की बात न होगी। अतः यह कलीसिया को उठाए जाने के समय की चर्चा नहीं है, यह पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने हेतु उसके आगमन की चर्चा है। आगे कहता है कि हर एक आंख उसे देखेगी। मेरे प्रियो, यहां जिस बात पर बल दिया गया है वह उसके राज्य की स्थापना है। कहता है पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। यह उनकी प्रतिक्रिया है जिन्होंने मसीह यीशु का त्याग किया, उसे ग्रहण नहीं किया। संसार उसे देखना नहीं चाहेगा। हाँ आमीन। अर्थात वह विश्वास योग्य है, वह बदलेगा नहीं, वह अवश्य ही करेगा जो उसने कहा है। मेरे श्रोता मित्रों, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। उसके सात नाम हैं और वह अपने कार्यों के प्रति सक्षम है। वह मुकरता नहीं। आज भी वह आपके जीवन से प्रेम करता है और चाहता है कि आप उसकी ओर लौट आएं। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को और अधिक समझने पाएं। प्रभु आप सबके साथ हो।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
फुर्सत मिले तो यही सोचना सोचना, फर्ज अपना निभाया है तूने कहा, नेमत तुझे जिंदगी की मिली, नेमत तुझे जिंदगी की मिली, दूरी न जाना इसे रूबरू है खुदा, तू समझ ना सका खुद पर फुर्सत मिले तो। अगर कोशिश कभी कर